पर्युष किसी भोर के अर्थ में है, परिष्कार होता है सवेरा हो जाता है, कल सुबह होगी। लेकिन ये जो रोज बाहर सुबह होती है जबकि बाहर प्रकाश फैल जाता है, वो वाली सुबह कल तो होगी ही होगी, लेकिन एक सुबह और हो सकती है जिसकी संभावना हमारे भीतर है, वो है हमारे आंतरिक जगत में प्रकाश की सुबह। उसके लिए हमें ये दिन कल आने वाले हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कौन क्या पाप आता है दुनिया में सब कुछ हो जाने के बाद भी, कौन कितना पाप आता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके सोच का ढंग क्या है, उसका अपना चुनाव क्या है। एक जहाज में बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, पानी का जहाज है, महीनों में पहुंचेगा मंजिल पर, महीनों इंतजार करना पड़ता है कि किनारा आता होगा। हमारे अपने जीवन में भी तो ऐसे ही होता है, वर्षों और कई जिंदगियों इंतजार करना होता है कि शायद किनारा आता होगा। लेकिन नाव में बैठ जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किनारे की उतनी ज्यादा चिंता नहीं करते। एक तो बहुत मुश्किल होता है कि किनारा छोड़ करके उस पार जाने के लिए नाव में बैठ जाना बहुत मुश्किल होता है। हम सब लोग कई कई बार उस पार जाने के लिए ये किनारा छोड़ करके नाव में बैठ चुके हैं। कई बार हमने धर्म की नाव स्वीकार कर ली है, लेकिन मजा ये है कि हमारा मन सिर्फ उस नाव में बैठ करके और जरा सैर सपाटे का आनंद लेने का है, उस पार किनारे पर पहुंचने का नहीं है। तब ऐसे एटीट्यूड अगर जिस आदमी का हो, ऐसा सोच हो, तो मुझे बताइएगा कि क्या वो उस पार पहुंच पाएगा, क्या वो अपनी नाव को उस पार ले जा सकेगा? नहीं ले जा सकेगा। कल जबकि सुबह हो, जबकि हम किसी धर्म की नाव पर जो कि ठीक हमारे सामने अचानक करके खड़ी हो जाएगी, हम मन बना लेंगे कि बैठ जाते हैं उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा मन उस पार पहुंचने का नहीं है, तो नाव की कोई हैसियत नहीं है कि वो हमें उस पार ले जा सके। चाहे तीर्थंकर जो कि इस पार से हमें उस पार ले जाने के लिए आते हैं, तीर्थकार्थ घाट होता है जो इस घाट से हमें उस घाट तक ले जाते हैं, वे भी क्यों ना उतर के आ जाएं, हम उनकी भी शरण क्यों ना ले लें, लेकिन यदि हमारा मन उस पार जाने का नहीं है तो वे भी हमें उस पार नहीं ले जा सकते। जिम्मेदारी पूरी हमारी है, और लोग उस नाव में बैठे हुए, उस जहाज में बैठे हुए, यात्रा चल रही थी, अचानक तूफान आया और नाव डगमगाई, लगभग डूबने को थी। इससे पहले कि नाव डूबे लोग बहुत घबराए, सब तरफ दौड़ और बेचैनी मच गई, लेकिन देखा कि एक बहुत बड़े सेठ चुपचाप बैठे हुए हैं। दो ही स्थितियां होती हैं जब आदमी किसी खतरे के बीच भयभीत नहीं होता, या कि वो एबनॉर्मल होगा या कि वो जीनियस होगा। दो ही चीजें हैं कि साइकोलॉजी में, या तो एबनॉर्मल होगा जो कि भय का कारण उपस्थित हो जाने पर भयभीत ना हो तो बहुत एबनॉर्मल असामान्य जीवन जीने वाला वो मनुष्य है, एबनॉर्मलिटीज है उसके भीतर, और या तो दूसरी स्थिति होगी कि वो भय से पार हो गया, बहुत जीनियस हो गया, या तो उसके भीतर कहीं अपने भगवान की झलक उसे दिखाई पड़ गई है, या कि उसने अपने भीतर की आदमियत को पूरी तरह से खो दिया, एबनॉर्मल हो गया। अब उसको अपने जीवन की कोई कीमत नहीं है, उसको अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, उसको अपने जीवन के उत्थान और पतन की कोई चिंता नहीं है, या तो वो व्यक्ति। लोगों ने कहा कि इन दोनों में से क्या है, ये थोड़ा सा मालूम कर लिया जाए। पहुंचे सेठ जी के पास, कहा कि शायद आपको नहीं मालूम कि बस नाव डूबने डूबने को है, अब डूबी कि तब डूबी, क्या आपको नहीं मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है, डूबे तो डूबे, अपना क्या, सरकार की नाव है, सरकार की जहाज है, इसमें अपने को क्या, अपनी नाव हो अपनी जहाज हो तो कोई परेशानी है, अपनी तो है नहीं, सरकार की है, सरकार चलाती है, वो हिसाब जाने, डूबे तो डूबे। तर्क बड़ा संगत, बात बिल्कुल लॉजिकल, लेकिन ऐसे तो जीवन नहीं चलता। लोग भी बड़े चौंके कि कैसा आदमी है। बोले ठीक है, सरकार की जहाज है, लेकिन जहाज के साथ डूबेंगे तो अपन भी डूबेंगे, आप भी डूबेंगे। सोचने का सुनो, हम इतने बुद्धू थोड़ी हैं तुम लोगों जैसे, हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा है, जीवन बीमा हमारा है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा हमारा, जहाज डूब जाए डूब जाए, हम डूब जाए डूब जाए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये सोच जहां है, जहां के अपने जीवन के उत्थान और पतन की जरा भी चिंता नहीं, उन लोगों से तो मुझे बात करनी नहीं है। उन लोगों के लिए कल कोई परीक्षण आने वाला नहीं है। वे प्रेम से कल सूरज उगे और रजाई रोल करके आराम से सोएंगे। बहुत थोड़े लोग हैं जो कल उठेंगे, बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि उगते हुए सूरज को देख पाते हैं। जो लोग उगते हुए सूरज को नहीं देख पाते, उनके जीवन में भी शायद कभी कोई सूरज नहीं उगता। कल एक सूरज आकाश में उगेगा, देखे कौन उसको देख पाता है, और एक सूरज भीतर भी उगने की गुंजाइश है, देखें कि उसे कौन देखता है। इतना ही आपके लिए करना है। आज जब रात सोएं, तब जरूर इतना सोच करके सोएं कि कल की सुबह का सूरज हम देख पाएं जो कि रोज उगता है, और एक सूरज जो कि आज तक मेरे भीतर नहीं उगा, काश कल की सुबह वो सूरज भी हम उगते हुए देख पाएं। अगर ऐसा मन बना करके आज आप सोएंगे तो मैं तो सोचता हूं कि कल आप जरूर जागेंगे, जरूर जागेंगे। जो इस तरह सोता है उसका सोना भी जागने के लिए होता है, लेकिन जो जागता है सोने के लिए जागता है, उसका जागना भी व्यर्थ। यहां हमारी जिंदगी, हम जागते हैं सिर्फ सो जाने के लिए। सुबह से हर आदमी उठता है सिर्फ इसलिए कि और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं, और अपने मोह के जाल को फैला सकूं, और अपनी वासनाओं के महक खड़े कर सकूं। किस चीज के लिए जागता है? सिर्फ सोने के लिए जागता है हर आदमी, सोने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो कि जागने के लिए सो जाया करते हैं, संसार से सो जाया करते हैं। एक सोना है संसार से जो कि परमात्मा में जागना होता है, और एक सोना होता है अपने भीतर की आत्मा में, जबकि संसार में हम जाग जाते हैं। संसार में वे जागते हैं जो भीतर की आत्मा में सो जाते हैं, लेकिन जो संसार में सो जाते हैं वे भीतर की आत्मा में जाग जाते हैं। यो जागृति निशायाम, जो जब सारी दुनिया रात के अंधेरे में सो जाती है तब वे जागते हैं, वे योगी कहलाते हैं। उनकी रात जब संसार जागता है तब होती है, और उनकी सुबह जब संसार सोता है तब होती है। वर्ध निशा का सन्नाटा, बनने बनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। जब सारा संसार अपने मोह की निद्रा में सोता हुआ गाफिल हो जाता, तब उन क्षणों में कोई योगी ही जो सबके भीतर बैठा हो। ये ध्यान रखना कि कोई योगी अलग से ऊपर से उतर के नीचे नहीं आता है। योगी हमारे भीतर अवतरित होता है, प्रतिक्षण अवतरित होने की उसके भीतर गुंजाइश है, लेकिन सवाल यह है कि कौन उसको जगह देता है। जिसके भीतर जितनी साफ सुथरी जगह होगी, उतना ही अच्छे से वहां पर कोई भगवान आकर के उतरेगा। गंदी जगह में तो भगवान उतरता भी नहीं है। कल दीपावली है, वो दीपावली नहीं है जो कि हमारे चतुर्मास के खत्म होने के बाद आएगी, जिसमें कि सिर्फ रंग रोगन ऊपर से कर लिया जाता है। कल ऐसे किसी रंग रोगन कर लेने वाली दीपावली नहीं है। कल तो भीतर के अंतरंग के साफ सुथरे करने के लिए दीपावली है, जो 10 दिन तक चलेगी। कल दीप रखे जाएंगे भीतर, और ये ध्यान रखना है कि कल के दीप में क्या डालना है। अहिंसा डालनी है, प्रेम डालना है, दया डालनी है, परोपकार डालना है, सेवा डालनी है, उपासना डालनी है। कल के दीपक में जिस तरह का तेल डालना है वो तेल डाल दीजिएगा, वैसा ही जीवन में प्रकाश होगा। या कि अगर आपको डालना हो तो घृणा डाल दीजिएगा, देश डाल दीजिएगा, ईर्ष्या डाल दीजिएगा, स्वार्थ डाल दीजिएगा। बेईमानी डालना हो तो बेईमानी का तेल डाल दीजिएगा, रोशनी जलेगी वही जैसा कि कल आप दीपक में तेल डालेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है, छोड़ता हूं आपके ऊपर, छोड़ता हूं। दो प्रश्न आपके सामने है कि चॉइस किसकी करना है, और कल जबकि सुबह हो आपको किस तरह उठना है। कल तो उपासना शुरू होगी, कल से तो पूजा शुरू हो। उपासना के बहुत गहरे अर्थ होते हैं, पूजा के बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और अगर सीधा सा अर्थ लिया जाए, असल में अर्थ तो सब सीधे ही होते हैं, हम ही टेढ़े होते हैं तो सीधे अर्थ समझ में नहीं आते, सब टेढ़े दिखाई देते हैं। और जिन क्षणों में हम सीधे हो जाते हैं तो सब कुछ सीधा मालूम पड़ने लगता है। भगवान की सेवा करना उपासना है, और प्राणी मात्र की सेवा करना साधना है। क्या कह रहा हूं मैं, छोटी मोटी बात नहीं है। जहां परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसा नहीं लिखा कि परस्परोपग्रहो वैष्णवानाम, परस्परोपग्रहो जैनानाम, ऐसा तो नहीं लिखा वहां पर। परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा है, सिर्फ जो वैष्णव है वे वैष्णवों की सेवा करें, जो जैन है वे जैनों की सेवा करें, जो पशु है वे पशुओं की सेवा करें, जो मनुष्य है वे मनुष्यों की सेवा करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वहां लिखा है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जहां जहां धड़कन है, जहां जहां सांस चलती है, वहां वहां हर जगह मेरा सम्मान पहुंचे, मेरी सेवा पहुंचे, मेरी साधना इतनी है, मेरा व्रत इतना ही है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। जो व्यक्ति प्राणी मात्र की सेवा का व्रत ले लेता है उसके जीवन में तो व्रत अनायास आ जाते हैं, बाकी सारे व्रत आ जाते हैं। आपने कल एक बार भोजन करने का व्रत लिया होगा, क्यों लिया आपको मालूम है? कल दूसरी बार ये जो खा करके और किसी दूसरे का भोजन छीनने की आकांक्षा होती है उसको छोड़ने के लिए अगर एक बार खाया है तो एक बार खाना सार्थक है। और उसे एक बार खा करके ये देखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसको कि एक जून का भोजन भी ना मिला हो, मेरा एक जून का भोजन उसके लिए, मैं कल एक जून का भोजन नहीं करूंगा, मेरे एक जून का भोजन किसी और, कल तो मेरा यही व्रत है कि मैं एक बार खाऊंगा और मैं जो नहीं खाऊंगा वह सबके। तब देखिएगा कि कैसे नहीं होता प्रकाश, कैसे नहीं होता पर्यूषण, लेकिन हम लोगों के साथ इस तरह की उपासना हो नहीं पाती, इस तरह की सेवा हो नहीं पाती। हमारे साथ तो सिर्फ हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हमारी अहिंसा, हमारे व्रत, हमारा संयम, हमारे नियम सिर्फ हम तक सीमित हो गए। जैसे कि अभी बात चल रही थी, स्वार्थ की बात चल रही थी, बस वही हमारे साथ। लेकिन स्वार्थ भी बड़ा अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। स्वार्थ भी अगर अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सौ का अर्थ अगर हम अपना ब्रह्म आत्मा ले लें, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय अगर हो, तब तो वो भी स्वार्थ ठीक है, तब तो वो भी स्वार्थ परमार्थ हो जाएगा। परमार्थ कहां से शुरू होता है? लोग हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हर दूसरे आदमी से परमार्थ शुरू हो जाता, हर पड़ोसी से परमार्थ शुरू हो जाता। हम सोचते हैं कि परमार्थ मंदिर में शुरू, परमार्थ मंदिर से तो शुरू होता ही होता है, लेकिन परमार्थ तो पड़ोसी से भी शुरू होता है, जो जो पर है उससे परमार्थ शुरू। मैं दूसरी परिभाषा कर रहा हूं, शायद आपको परमार्थ की यह परिभाषा अच्छी ना लगे, मैं वो परिभाषा भी जानता हूं जो आज तक की गई है। परम है जिसका प्रयोजन, वही है परमार्थ। परम का अर्थ श्रेष्ठ होता, उत्कृष्ट होता है। मोक्ष है जिसका प्रयोजन, वही है परमार्थ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां प्राणियों के प्रति हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, क्या वहां पर हमारे मोक्ष की प्राप्ति संभव है? जहां हम दूसरे जीव को समाप्त करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, वहां क्या हम ज्यादा दिन जी सकते हैं? कोई किसी को मार के कितने दिन जी सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अपने भीतर पूछिए। दूसरे का छीन करके हम कितने दिन सुखी रह सकते, दूसरे का छीन कर कितने दिन हम अपना घर भर सकते हैं? लेकिन ये सब क्वेश्चन हमने दूसरे से पूछे हैं। अब तो कल का दिन ऐसा है जब ये सारे प्रश्न हमें अपने से पूछने हैं, सिर्फ प्रश्न देख रहा हूं। और उसके अलावा भी कुछ थोड़ी सी चीज अगर हो पाएगी तो देता हूं, जितना कुछ आएगा वो देता हूं। उपासना और सेवा, जहां भगवान की सेवा होती वहां उपासना कहलाती हो, जहां मनुष्य मनुष्य के प्रति उत्तार भाव से भर जाता है वो सेवा अकेली सेवा कहलाती है। लेकिन उसमें भी परमार्थ छुपा हुआ है, ये हम न भूलें। कल हमें दोनों करना है, एक तरफ भगवान की सेवा करनी है, उपासना करनी है, और दूसरी तरफ प्राणी मात्र के लिए अपने मन को पवित्र करना है, वो भी एक सेवा है। किसी को दुखी ना हो, मुझे किसी की सेवा करने का मौका ना मिले, क्योंकि मौका तब मिलेगा जबकि दूसरा कोई दुखी होगा, तब ना मुझे मौका। मैं तो ये सोच रहा हूं कि किसी को कोई दुखी ना हो ताकि मुझे किसी की सेवा का मौका ना मिले, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती शायद दुनिया। लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि जब कोई दुखी हो और हमें मौका मिले दूसरे की सेवा करने का। हम तो सुबह से एक रस्सी रख के ही निकलते हैं कि कोई कुएं में गिरे और हम निकालते हैं। हाँ, हमें मिले तो मौका, सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। लोग कहते हैं कि सेवा तो दुनिया में, कलयुग में तो सेवा ही बड़ी चीज है। तो हम तो शायद इस तरह की सेवा के लिए लालायित थे, लेकिन ऐसी सेवा सेवा नहीं कहलाती जिस सेवा के पीछे स्वार्थ छिपा हो, वो सेवा नहीं है। जिस सेवा के पीछे परमार्थ छिपा हो, वो सेवा चाहे भगवान की हो, वो चाहे व्यक्ति की हो। कल आप अगर मस्जिद में ना जा पाए हो, कल आप मंदिर में प्रार्थना ना कर पाए हो, तो ऐसा करिए, किसी छोटे से रोते बच्चे को हंसा लीजिए ऐसा लिखा है किसी ने, कल आप मंदिर में नमाज पढ़ने ना जा पाए हो, कल आप मंदिर में प्रार्थना करने ना जा पाए हो, तो जरा ऐसा करिए किसी रोते को हंसा दीजिएगा, हो गई प्रार्थना, हो गई इबादत, और इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कहा बच्चों से कि सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। बच्चों से कहा गुरुजी, नहीं बच्चों से कहता हूं कि सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी के साथ जैसा बच्चों ने किया वैसा मेरे साथ मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो इतना ही कह पाऊंगा कि अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने बच्चों ने पूछा कि ठीक है स्वर्ग तो हम चाहते हैं पर हम नहीं जानते कि सेवा कैसे करनी चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि सुनो कोई डूब रहा हो तो उसे निकाल लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, किसी के घर में आग लग गई हो तो बुझा देनी चाहिए और उसको वहां से बचा देना चाहिए, किसी को अगर रास्ता पार करना हो, कोई बूढ़ा हो रास्ता पार ना हो पा रहा हो तो थोड़ी मेहनत करके उसको रास्ता पार लगा देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सब सेवा के काम हैं और जो सेवा करता है उसको स्वर्ग मिलता है, हेवनली हैपन, स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, डिवाइन लाइफ, बहुत अच्छा जीवन का। अच्छा स्वर्ग तो हमें चाहिए और सेवा हम ऐसी करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और जब अगली बार एक हफ्ते के बाद बच्चे मिले गुरुजी से तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों बच्चों तुमने कोई सेवा का काम इन पिछले दिनों में किया, तो तीन लोगों ने हाथ दिखाया, हमने किया हमने किया हमने किया। अच्छा तुमने क्या किया गुरुजी? वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमने एक अच्छा सेवा का काम किया, एक बूढ़ी अम्मा थी उनको हमने रास्ता पार कर, वाह बहुत अच्छा काम, कितना बढ़िया काम किया तुमने, बहुत बूढ़ी नहीं होंगी वो, बोले हाँ बहुत बूढ़ी थी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुमसे खुश हूं, बैठो। दूसरे से पूछा, और बेटे तुमने क्या सेवा करी? गुरुजी एक बूढ़ी अम्मा को हमने भी रास्ता। अब तो गुरुजी थोड़े से चौंके, आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा अच्छा तुमने भी बूढ़ी अम्मा को पार करवाया रास्ता, हमने भी, बैठो तुमसे भी खुश हूं। तीसरे वाले से एक ही बचा था उससे पूछा, उसने भी कहा कि गुरुजी हमने कल रास्ते में खड़ी हुई एक बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करवाया। अब तो गुरुजी जरा हैरान हो गए, ये तो खतरा लगता है। उन्होंने कहा कि अरे क्या बच्चों क्या तीन बूढ़ी अम्मा तुमको मिल गई थी जो कि तुमने उनको पार करवाया? बोल नहीं तीन दिन क्यों, एक ही थी, तो अच्छा तुम लोगों ने तीनों ने मिलकर उनको पार करवाया? कहले नहीं, पहले वो तो बहुत इनकार कर रही थी, लेकिन पहले इसने पार करवाया, फिर मैंने उनको यहां पार करवाया, तीसरे वाले ने फिर उसको उसी पार करवाया। अब चूंकि स्वर्ग चाहिए था और आपने कहा था कि जब किसी को रास्ता पार करवाया जाए तो स्वर्ग मिलता, हमको तो स्वर्ग चाहिए था, हमने बूढ़ी अम्मा को पार कर, वो तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन अब हमें स्वर्ग। सवाल हमारे स्वार्थ का था ना, इसलिए हमने सेवा करी थी। तब गुरुजी क्या कहेंगे? तब गुरुजी को यह कहना पड़ा कि अब ऐसी सेवा मत करना ना कि दूसरे के घर में आग लगा के बुझाओ, दूसरे को डुबा करके फिर बचाओ, हमें नहीं करवाना आपसे सेवा। ऐसी कोई उपासना ना हमें भगवान की आपसे करवानी है, ना ऐसी सेवा हमें यहां संसार में आपसे कोई करवानी है। जो सेवा दूसरे को पीड़ा में डाल करके की जाए वो सेवा नहीं कहलाती, सेवा तो वास्तविक वो है जब हम दूसरे को अपने समान मानते हैं, अपने जैसा उसे सम्मान देते हैं, और जैसे हम अपने जीवन में चाहते हैं कि कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई पीड़ा हमारे जीवन में ना आए, ऐसे ही हम दूसरे के लिए चाहने लगे कि कभी इसके जीवन में कोई पीड़ा ना आए, कोई दुख ना आए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसमें कहीं आना जाना भी नहीं होता है, सिर्फ एक जगह बैठ के सिर्फ भावना तो की जा सकती है। और दूसरी बात, उपासना जो हम भगवान की करते हैं उसका कोई ढंग नहीं, लेकिन हमने ढंग बना रखे, हमारे अपने उपासना के ढंग अलग अलग है, और हम पूरे के पूरे, जैसे कि एक बात अभी कही मैं तो उसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, आप उसको भूलिए मत, वो सारी चीजें और ये जुड़ करके पूरा हो जाए, कोई पूरा नहीं बोल सकता, ये तय है, मैं भी छूट जाएगा मेरे में से भी कुछ, और कोई तीसरा बोलेगा तो शायद उसमें कुछ और ऐड कर, शायद चौथा बोलेगा कुछ और ऐड कर, वी आर मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पर हर चीज मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ मैनिफेस्टेड है। जब भी होती है, जब भी अभिव्यक्त होती है चीज, तो बहुत थोड़ी सी होती है। कभी बुद्ध से लोगों ने प्रश्न किए थे और बुद्ध ने उनके जवाब दिए थे, और जब बुद्ध जवाब देते देते थक गए थे तो उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे पड़े हुए ढेर सारे पत्ते अपने हाथ में बटोर करके कहा था कि क्या ये पूरे वृक्ष के पत्ते हैं? लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो वृक्ष के बहुत थोड़े से पत्ते हैं। उन्होंने कहा कि बस अब कोई समाधान नहीं दे रहा हूं, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बस इतने पेड़ के पत्ते हैं, पूरा तो शायद मैं भी नहीं कह सकूंगा, पूरा जाना जा सकता है लेकिन पूरा कहा नहीं जा सकता। उपासना के बारे में और पूजा के ढंग के बारे में, जबकि आप कल से उपासना बहुत तेजी से करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। महाराज जी का कहना कि संगीत के साथ करेंगे, लेकिन भीतर कोई संगीत नहीं होगा तो बाहर का संगीत व्यर्थ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना, किसके? अपने और अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के। एक डिवोशनल एटीट्यूड भीतर क्रिएट होना चाहिए, एक भावपूर्ण मन बनना चाहिए। लोग पूछा करते हैं कि भगवान कहां है, कैसे बताएं? देखेगा भी कैसे? ऐसे दिखता होता, अगर डिसेक्ट करके बताया जा सकता होता तो हम हो सकता था कि एक डिसेक्शन की टेबल पर आदमी का शरीर लिटा देते और सब कुछ डिसेक्ट करके दिखा देते साइंस की तरह, कि ये रहा हार्ट, ये रही किडनी, ये रहा स्प्लीन, ये रहा लीवर और ये लंग्स, सारी चीजें, ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ये मस्तिष्क, सब कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इस एनालाइजेशन से कुछ नहीं मिलता। कल एनालाइज नहीं करना, कल तो इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का दिन है कल। और वो इंटीग्रेशन होता है वो होलनेस में, जब हम किसी चीज को उसकी समग्रता में देखते हैं तब दिखाई पड़ता है परमात्मा। वो डिवोशनल एटीट्यूड जब हम समग्र के प्रति सचेत हो जाते हैं, और वो समग्र क्या है? वो हमारे भीतर बैठी हुई परम सत्ता है, वो समग्र है। पूर्णमिदं पूर्णमादाय, जो पूर्ण है, जिसमें से निकाल लेने के बाद भी पूर्ण बचता है और जिसमें और कुछ जोड़ देने के बाद भी पूर्ण ही रहता है, ऐसी अनंत सत्ता है वो, जो कि भीतर हमारे स्वयं विराजी हुई। और उसको देखना हो, लोग पूछा करते हैं कि उसको कैसे देखें, उसके लिए कहिए डिवोशनल एटीट्यूड, एक भावपूर्ण दशा, एक भक्त जिसके भीतर देखा जा सकता भगवान। कल आप देखेंगे भगवान, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेकिन कल तक के बीच आज रात है, उस रात में अपने भीतर कोई भक्त पैदा करना होगा, कोई उपासक पैदा करना होगा, तब उपासना शुरू हो पाएगी, तब कोई उपास दिखाई पड़ेगा, इसके बिना उपास दिखाई नहीं पड़ सकता। रामकृष्ण के बारे में एक किस्सा होता है, उपास दिखाई पड़ना चाहिए, वरना सिर्फ एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, और मूर्ति में भगवान देख पाना, अनगढ़ जगह पर परमात्मा देख लेना और मुश्किल है। यहां तो हम गड़े गड़ाए परमात्मा, हम परमात्मा नहीं देख पाते। छोड़िएगा कि जो जीवन में सबके परमात्मा देख सके, क्या देखेगा? आदमी के भीतर किसी को भगवान दिख जाए बहुत मुश्किल है। यहां तो भगवान की प्रतिमा में भगवान नहीं दिखाई पड़ता लोगों को, आप कहां की बात करते हैं। लेकिन जिसका मन भक्ति से भरा होता है उसे तो सारे जगत में सिवाय भगवान के और कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। मां को अपने बेटे के सिवाय, वो मोह के वश है, अपने बेटे के सिवाय और किसी का बेटा अच्छा नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही तो किसी भक्ति से भरे हुए चित्त के द्वारा भगवान के सिवाय जगत में और कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ती ना।